अभिनव द्वीप को वृंदावन कहा गया, जगन्नाथपुरी इज नॉट वृंदावन, एनीवेयर इट इज नॉट रिटन इन स्क्रिप्ट दैट जगन्नाथपुरी इज, बट एवरीवेयर इन एवरी पुराण इट इज रिटन, ये लिखा गया नवद्वीप वृंदावन है। यदि नवद्वीप में कुछ आदमी रहे और आराधना करे तो राधा कृष्ण वृंदावन में वो राधा कृष्ण को पाएगा। भक्ति विनोद ठाकुर हैज रिटन दैट एनी वन विल मेक एनी भजन कुटी, भजन कुटी यू नो इन नवद्वीप थिंकिंग दैट आई एम लिविंग इन वृंदावन, दिस कुटी इज इन वृंदावन after some time doing bhajan earnestly, bhajan karne se Vrindavan mein Radha Krishna ko payega, he will have the service of Radha and Krishna in Vrindavan. Everywhere it is written that Navadvip is hidden Vrindavan, but everywhere it is written that Jagannath Puri is like Dwarka, द्वारका है वृंदावन नहीं। तो ये क्यों श्रेष्ठ हुई, ये नवद्वीप क्यों श्रेष्ठ हुआ, वाई नवद्वीप इज सुपीरियर देन ऑल एंड इट इज इक्वल टू वृंदावन, नॉट इक्वल बट सम मोर, इट इज मोर मर्सीफुल देन वृंदावन। तो क्या करना होगा, गुरु मुख पद्म वाक्य, गुरु प्राकृत कोई चीज नहीं है, गुरु जी की अनुभूति कोई प्राकृत अनुभूति की चीज नहीं है, इसलिए उस पर भरोसा रखो, विश्वास रखो और उनके मुख से, मुख रूपी कमल से जो उपदेश निकलते हैं उसको धारण करने की चेष्टा करो, नहीं समझते हो उनसे पूछो, उनके भाव को ग्रहण करो। चितेते करिया ऐक्य, एकता करो, उनके बात को लेकर के समझो। एकता माने क्या, शास्त्र जो बातें कह रहे हैं, गीता भागवत जो कह रही है, वेद जो कह रहे हैं और गुरु जी कह रहे हैं, दोनों एक चीज है, तीन चीजें हैं, हरि गुरु वैष्णव, एक हरि कृष्ण गुरु और शास्त्र, इन तीन चीजों को मिलाकर के हमको देखना है। यदि गुरु शास्त्र के विरुद्ध कोई बात कहते हैं तो वो गुरु मान्य नहीं है। जो वैष्णव शास्त्र के अनुसार नहीं बातचीत करते, उपदेश नहीं देते, उनका आचरण ऐसा नहीं है तो वैष्णव भी मान्य नहीं है, क्योंकि शास्त्र कृष्ण की कथाएं हैं, कृष्ण के मुख से निकली हुई। गीता, श्रीमद् भागवत, वेद, ये सब किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बने हैं, ये अपौरुषेय है। अपौरुषेय माने क्या, किसी पुरुष ने साधन के द्वारा नहीं ये बनाया, ये कृष्ण के द्वारा स्वयं निकली हुई चीजें हैं, स्वतः प्रमाण ये है। यदि उसके अनुसार में गुरु का आचार विचार और उपदेश नहीं है तो वो गुरु गुरु नहीं है, वैष्णव भी वैष्णव नहीं है। किंतु कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शास्त्र की बातों को हम नहीं समझ पाते और गुरु जी के बातों में उसमें कुछ अंतर सा दिखता है, उसमें क्या करना चाहिए, उस समय में वैष्णव जो शुद्ध वैष्णव है, जो गुरु के समान ही है, तत्वज्ञ है, उनकी बात और गुरु की बात को मिलाओ, यदि वो दोनों ठीक है तो शास्त्र को समझने में हमारा भूल हुआ है, ऐसा समझो। इसलिए यदि शास्त्र की बात यदि मालूम पड़ती है कि उल्टी कुछ है, गुरु उसको नहीं और वैष्णव भी लोग नहीं कहते जी नहीं, ऐसा नहीं। जैसे शास्त्र में लिखा जी कभी झूठ मत बोलो, किंतु कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर से, ये जो कहो जो हाथी मारा, अश्वत्थामा मारा गया, उन्होंने कहा कि शास्त्र में लिखा झूठ मत बोलो और आप कह रहे हैं जैसे झूठ बोलो, मैं तो झूठ नहीं बोलता। यदि उसी समय में नारद ऋषि होते, उसी समय याज्ञवल्क्य होते, उसमें व्यासदेव होते और इनको कहते नहीं कृष्ण जो कह रहे हैं वही बात मानो, तो कृष्ण की बात ही माननी चाहिए, शास्त्र वहां पर भरा रहे, उसकी बात हम नहीं समझते हैं, कृष्ण की बातें ही सत्य है। और इसलिए युधिष्ठिर महाराज जी को नरक देखना पड़ा, कृष्ण की बात नहीं मानी। इसलिए कभी कभी ऐसी बातें हैं जो शास्त्र में हैं, किंतु गुरु कुछ उसको व्याख्या दूसरे रूप में कर रहे हैं। और वैष्णव यदि अनुमोदन करते हैं तो दोनों एक होकर के वहां पर वो बात ठीक है। यदि गुरु और वैष्णव दोनों एक विचार के हैं तो उस समय शास्त्र का तात्पर्य वैसा ही है जैसा ये कह रहे हैं, ये बात ठीक आ रहा है समझ में। और यदि वैष्णव और शास्त्र एक तरफ में है, गुरु एक तरफ में है, तो गुरु की बात छोड़ो। और यदि गुरु और शास्त्र एक कह रहे हैं, वैष्णव एक कह रहे हैं, तो उसमें गुरु और शास्त्र की बात मानो। इस तरह से चित्ते ते करिया, इसलिए गुरु जी के बातों को ये समझो जो वैष्णव भी अनुमोदन करते हैं और शास्त्र भी अनुमोदन करते हैं, इसलिए उनके बातों पर भरोसा रख करके आगे बढ़ो। किंतु गुरु गुरु होना चाहिए, कलयुग भी गुरु नहीं होना चाहिए, उनमें स्वार्थ नहीं होनी चाहिए, शुद्ध भगवत भक्ति की बातें होनी चाहिए, निरंतर भजन करने वाला होना चाहिए, संसार में किसी बात की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, समाज रुपया और प्रतिष्ठा की तरफ से वो चल रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, तब तो ठीक है। वो भगवत अनुभूति संपन्न और शास्त्र के विचारों से एकदम परिप्लुत हो और संसार से दृष्टि, ये तीन लक्षण गुरु में होना चाहिए। जो नहीं है ऐसे गुरु को रिजेक्ट कर दिया। जिसकी शास्त्र अनुभूति नहीं है, शास्त्र अनुसार नहीं चलते हैं, भजन नहीं करते हैं, विशेष करके नाम में रुचि नहीं है और संसार के प्रति अनाशक्ति भी नहीं आई है, अपना कुछ स्वार्थ भी देखते हैं, तो वो गुरु गुरु नहीं। इसलिए ऐसे गुरु जो हों, जैसे नरोत्तम ठाकुर जी हैं, हमारे रूप गोस्वामी जी हैं, व्यास देव जी थे, सुखदेव गोस्वामी हैं, रामानुज थे, मध्वाचार्य थे, बाद में हमारे रूप सनातन इत्यादि हुए हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कृष्णदास कविराज, अभी भक्ति विनोद ठाकुर तक, हमारे गुरु जी तक, ये लोग एक विचारधारा है। ऐसे गुरु के बातों को ही लेकर के हम अपने हृदय में ऐक्य करके और ना करी हम अने आशा। जो कहते हैं कि कृष्ण भक्ति ही प्रेममयी चीज है, अमृत है, कर्म ज्ञान योग तपस्या व्रत होम स्वाध्याय संयम और दूसरे की उपासनाएं छोड़ करके एकांतिक रूप में ब्रज में राधा कृष्ण की सेवा तुमको लेना है, बस इसी की भरोसा रखो, बस यही, इसी से तुम्हारा कल्याण। कभी कोई अपने कोई कीर्तन करता है, अब कोई महापुरुष कीर्तन करते हैं, महापुरुष के कीर्तन में जब दूसरा भी करता है उसमें शक्ति संचरित होती है, और जिसमें शक्ति नहीं है, छंदोबद्ध करना जानता है, कविता लिखना जानता है, उनमें ये चीजें नहीं होती, पावरलेस है। इसलिए ये महानुभाव गुरु वर्ग लोग अपने हृदय की भावनाओं को शक्ति समन्वित करके उसमें छोड़ा है कीर्तन, इनके भावों को समझ करके हम लोगों को कीर्तन करना, इसीलिए ये कीर्तन किया कि गुरु जी के चरणों में एकांतिक श्रद्धा हो और वो जो उपदेश करते हैं जो राधा कृष्ण का भजन करना चाहिए और उनमें प्रेम ही हमें प्रयोजन है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए भजन का, क्या भजन का उद्देश्य क्या है, अभी साधन भक्ति, साधन भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि किस लिए, किस लिए हो, हमारे अंदर में वो भावनाएं जो गोपियों को, गोपों को, ब्रजवासियों को था, वही भावनाएं हमारे हृदय में अवतरित हो, तब तो वो साधन होगा, और ये नहीं होने से साधन नहीं कहा जाएगा। जा लाख कोई हरिनाम करे, 3 लाख हरिनाम करे, दिन रात गीता 5 तार है, किसी उद्देश्य के लिए। यदि हमको अर्थ की जरूरत है, हम इंजीनियर, वकील, हम व्यवसाय कोई करेंगे जैसे कि पैसा है, उद्देश्य तो कुछ है ना, बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं है। इसलिए उद्देश्य होना चाहिए, हमको ये चीज होना है, और तब फिर जो साधन करते हैं तब ये साधन। जब बिल्वमंगल की भांति जब हृदय में भाव आने लगे तब प्रेम के लिए वो साधन करेगा, तब उसको कहते हैं भाव भक्ति। इन उद्देश्यों को लेकर के हम लोगों को भजन राज्य में अग्रसर होना चाहिए। संपन्न हो चुकी है, कृष्ण चंद्र जी किसी विचार में डूबे हुए हैं, गंभीर विचार कर रहे हैं। इतने में श्रीमती राधिका जी आ गई, आप किस विचार में डूबे हुए हैं? मैं सोच रहा हूं हमने अपनी लीला प्रकट की जगत में द्वापर के अंत में, ऐसी सुंदर लीला की जो जगत में कभी भी ऐसी लीला नहीं हुई। लताओं को भी हमने प्रेम देने की चेष्टा की, ऐसी सुंदर मधुर लीला की। उसमें में हमने ऐसा प्रेम का आस्वादन किया जो जगत में कभी नहीं किया था। मैं ये चाहता था इस प्रेम को, इस प्रेम का गंध कुछ जगत के जीवों को दिया जाए और उन लोगों का कुछ उद्धार भी हो जाए। समझे ये ब्रज क्या चीज है, कृष्ण क्या चीज है, मैं कौन हूँ, राधा जी क्या है, गोपियां क्या सोचते हैं, ये लोग समझे, समझते नहीं है। हमारी और तुम्हारी लीला को लोग काम समझते हैं, जैसे स्त्री पुरुष का काम होता है। हमारे सखाओं को लोग समझते हैं जैसे संसार के सखा लोग होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए किसी से मित्रता करते हैं और स्वार्थ दूर हो जाने पर मित्रता छूट जाती है, बल्कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। हमारा मित्रता, हमारी सखा भाव ऐसा नहीं, जगत के लोगों को समझा नहीं सका। हमारी यशोदा मैया इतना ऐसी प्यार करती है जो जगत में कहीं नहीं है, लोगों ने इसको भी नहीं समझा। मैं चाहता हूं इन सब चीजों का जगत में कुछ प्रसार प्रसार और लोग समझें इन चीजों को। ये तो फिर कैसे हो, मैं एक परामर्श देती हूँ। समझते कि विश्व ब्रह्मांड में जितने भी अवतार हैं सब अवतारों के मूल बलदेव जी हैं, सब अवतार, और जितने जीव हैं मुक्त और बद्ध, सबके मूल तटस्थ शक्ति के आधार और संधिनी शक्ति के मूल प्रभु ये बलदेव जी हैं। इनका भी कुछ परामर्श ले लिया जाए। बलदेव जी को बुलाया गया, वो भी आ गए। बलदेव जी ने कहा कि इस विषय में मैं समझता हूं, नारद जी की भी राय ले ली जाए क्योंकि विश्व में सर्वत्र घूमते हैं, इसलिए उनकी भी राय ली। नारद जी आ गए, जब ये प्रस्ताव रखा गया उनके सामने, सब लोगों ने मिलकर कर रखा, ये आपकी राय क्या है? उन्होंने कहा जिसे ये ऐसे काम नहीं होगा, आपने जिसको जगत का अधिष्ठात्री बनाया है देवता, जैसे ये जगत ब्रह्मांड सब निकलता है, उस सदाशिव जी को भी बुला लिया जाए। सदाशिव माने ये शंकर जी हैं, उनके मूल जो हैं, सदाशिव जी को भी बुला लिया जाए। तब जगत की अभिज्ञता, नारद जी की अभिज्ञता, बलदेव प्रभु जी और हम दोनों मिल करके जगत में इस प्रेम का हम लोग प्रचार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं होगा। एक सभा हुई, उसमें सभी लोग, अब उनको भी बुलाया गया, वो भी आ गए। भाई ये जगत में कैसे प्रचार होगा ना? ये सदाशिव जी ने कहा मैं इसके लिए तैयार हूँ, छत्र उत्पन्न करूंगा जगत में, मैं आगे जाऊंगा और जाकर के छत्र प्रस्तुत करूंगा, जैसे कि आप लोग अवतरित होकर के और इस चीज का जगत में प्रचार हो। ये आप क्या करेंगे? मैं अद्वैत बन करके जाऊंगा जगत में, आपसे भी आप पीछे प्रकट होंगे, मैं आपसे कम से कम तो 60-70 वर्ष पहले जाऊंगा और एक ऐसी भूमिका की स्थापना करूंगा जिसमें आप सभी लोग, नारद जी भी और राधा कृष्ण इत्यादि सभी लोग आप लोग हैं, और फिर ऐसा क्षेत्र बनाएंगे जगत में प्रेम की बाढ़ ला देंगे। अजी ठीक है, फिर विचार हुआ बलदेव जी किस रूप में जाएंगे, भक्त के रूप में चले, अवधूत भक्त के रूप में, वही बलराम जी, बलदेव जी जैसे समस्त जीव बद्ध और मुक्त सब कुछ उन्हीं से निकल, जितने मुक्त जीव हैं गोलोक वृंदावन में वो मुक्त जीव हैं, कभी बद्ध नहीं होते, वो जगत में नहीं आते, आते हैं केवल कृष्ण के संग में, बलदेव जी के संग में जगत में कुछ लीलाएं करके चले जाते हैं। और जो बद्ध जीव हैं जैसे हम लोग हैं, ये कर्णाद दिशाई विष्णु, वो बलदेव जी के अंश हैं, उनसे ही निकलते हैं। ये लोग कोई बद्ध हैं कोई मुक्त हैं, तो ये बलदेव प्रभु जी नित्यानंद भक्त के रूप में चलें, और ये लोग भी भक्त के रूप में हैं, कृष्ण भी भक्त के रूप में ही आए, कोई भगवान के रूप में न चले। नारद जी को कहा गया कि आप श्रीवास के रूप में नवद्वीप में जन्म ग्रहण करें, और द्वैताचार्य ये जो सदाशिव हैं वो उस रूप में आए, और फिर गदाधर जी, राधा जी गदाधर के रूप में आए, और कृष्णचंद्र जी आए गौरांग महाप्रभु, उसमें राधा जी का भाव लेकर के ये कृष्ण जी आए। ये सब विचार होकर के अपने जितने परिकर थे उनको आदेश दिया, तुम लोग सभी पुरुष के रूप में वहां हमारी लीला में आना, ऐसा कह करके महाप्रभु जी के रूप में राधा कृष्ण जी, श्याम सुंदर कृष्ण ही गौरांग महाप्रभु के रूप में, बलदेव जी नित्यानंद प्रभु के रूप में, शिवास पंडित नारद थे वो शिवास पंडित के रूप में, और तो बतला और विष्णु जी आए सदाशिव और द्वैताचार्य आकर के पहले इन लोगों ने क्षेत्र बनाया, और तब विश्व में उन्होंने प्रेम का आस्वादन किया। चैतन्य महाप्रभु की अभी लीला का प्रसंग वहां पर बतला रहा था, उसको थोड़ा सा यहाँ पर बतला। साधारण एक मनुष्य के रूप में यहाँ पर लीला कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, जब कृष्ण आए, आदत नहीं छूट सकती, कपड़ा बदल जाएगा, जिसका जो स्वभाव है लाल कपड़े पहनने से ही सफेद कपड़े में जब जैसा था व्यक्ति, उसका स्वभाव वाणी विचार ये सब बदल जाएंगे सहज ही। तो कृष्ण थे जैसे छेड़खानी किया करते थे, वैसे महाप्रभु जी बचपन में छेड़खानी करते हैं, स्वाभाविक, कोई नहीं समझता कि ये भगवान है। स्कूल जा रहे हैं पाठशाला संस्कृत की, और वहां से पाठशाला से आकर के गंगा में स्नान कर रहे हैं, और उसमें स्मार्ट पंडित लोग बड़े धुरंधर धुरंधर समस्त शास्त्रों के पंडित लोग स्नान कर रहे हैं, जनेऊ लेकर के गायत्री इत्यादि कर रहे हैं, यद्यपि जनेऊ है सब कुछ है, न्याय का 90 न्याय का विचार कर रहे हैं, भक्त हृदय में प्रेम नहीं। सुना कल हम, आज ही हम लोग कहीं जा रहे थे, या रहे थे, देखा विश्व धर्म सम्मेलन या क्या, विश्व
मानव धर्म,
विश्व मानव, उनका एक ये देखा, दिखलाया एक वो पर्चा देखा, उसमें लिखा गया रात में कैसे सोएंगे सुख से, और दिन में कैसे काम करेंगे रात में सुख से हम सो सके, और रात में कैसे सो सके सुख से, ये दिन दिन में आकर के खूब अच्छी तरह से परिश्रम करके ये करें। आजकल यही सब धर्म के नाम पर ये सब चीजें होती, उसमें भी ऐसी ही चीजें होती, परमाणु का विचार था किंतु आत्मा का विचार नहीं था। खाओ पियो मौज करो, ई ड्रिंक कैन बी मेरी, ये था। किंतु आत्मा का कल्याण कैसे हो, जीव के अंदर में भगवान के प्रति प्रेम कैसे उत्पन्न हो, जीव का यथार्थ कल्याण कैसे हो, ये सब चीजें नहीं थी। जीव हिंसा की बातें खूब चलती थी, ये अहिंसा परमो धर्म, और बंगाल में एक मछली भी नहीं बचती थी, यहाँ तक कि कछुए नहीं बचे मथुरा में, जमुना जी के कछुए सब बंगाल में और कहाँ दक्षिण में सब चलान चले गए, जल साफ करने का कोई जमुना में कोई तरीका ही नहीं रहा। और अहिंसा परमो धर्म, इस तरह से उस समय की बातें थी। चैतन्य महाप्रभु जी कृष्ण ही थे ना, इसलिए वो स्नान करने जाते तो उन ब्राह्मणों पर जो अंधिक कर रहे हैं, गायत्री मंत्र इत्यादि जप रहे हैं, भाव नहीं जानते, कुल्लू लेकर के और उन पर छिड़क देते, मुख से फुर्र करके ऐसे उड़ा देते सब पर लग जाते, और वो सब गाली बकते हैं, मारने के लिए दौड़ते तो जल में डूब करके वहां हाथ चले जाते और फिर आकर के कुल्ली करने लगते। इसके बाद में वो बिगड़ करके जब कुछ नहीं कर पाते, बूढ़े आदमी बेचारे या वो निकल करके अपने बच्चों के साथ में, और फिर अपने कपड़े पहनकर और स्याही का दाग इधर उधर लगा करके घर में बड़े विनीत भाव से आते, माने जी मैंने कुछ किया नहीं। मैया कहती है तुम्हारे पिताजी लठिया लेकर के गए हैं तुमको खोज में, अभी तुमको पानी से पीटेंगे, तो क्यों मैंने क्या किया, तो उनके ऊपर में कुल्ली क्यों फेंका, पैर से पानी पीट करके उनके ऊपर में क्यों लगाया, क्यों किया। इसका तात्पर्य उसका कुछ भी मूल्य नहीं है उनके साधन भजन का, कोई साधन ही भजन नहीं। यदि भगवान के प्रति प्रेम हो, नाम के प्रति प्रेम हो, तो यह भजन है। और जो उसको भगवान से कोई संबंध नहीं, भैरव जी की पूजा कर रहे हैं, काली जी इतनी मुख बाहर करके 21 फुट लंबा बना दिया और उनकी पूजा हो रही है, और पूजा करने के बाद में उसी की मूर्ति को गंगा जी में या पानी में लेकर के फेंक दिया, ये पूजा है।
देवी की पूजा, दुर्गा की पूजा
है, ऐसे ही होती है।
2 दिन रखेंगे और खेत भी बीजेंगे।
आजकल ये रामनवमी का ये चल रहा है, आज से 250-300 वर्ष पहले बंगाल में कुछ ऐसे व्यक्ति हुए जो कविता की रचना कर देते थे, उन्होंने ऐसे ही कविता की रचना कर दी, और उन्होंने रामचंद्र जी के द्वारा उस कविता में नए रूप में कहीं शास्त्र में उल्लेख नहीं यह किया, जो रावण पर आप सभी विजय पा सकते हैं यदि दुर्गा की पूजा करें, तो दुर्गा जी की पूजा कर रहे शास्त्र में कहीं नहीं, अपने आप कल्पना करके 250 वर्ष पहले केवल ये बातें, इसके पहले नहीं था, कहीं नहीं, किसी शास्त्र में नहीं है, रामायण में नहीं है, पुराण में नहीं है, उपनिषदों में नहीं है, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं है ही नहीं। अध्यात्म रामायण इत्यादि हमने हजारों रामायण देखा है, एक विश्वास के रूप में पहले चला, कोई नहीं मानता था, पीछे से ही मानने लगे, तो वो पूजा करते 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 एक एक कमल का फूल देते थे, 108 फूल की 100 कितना देंगे, 107 दे दिया, पूजा कर लिया, जब देने लगे तो किसी ने चुरा लिया, वो देवी ने ही चुरा लिया परीक्षा करने के लिए, उसमें उन्होंने लिखा है, और उस कमल के फूल को जब देखा ये नहीं है, अब क्या करो, पूजा हमारी होगी नहीं, बस आंख निकाल करके कमल नयन उनको कहते हैं, कमल ज्यों देने चाहिए, वर ब्रूही आप वर मांगिए, कहे रावण का ध्वंस करो, बहुत अच्छा तुम करो, इस तरह से राम के द्वारा पूजा की उनकी दिखलाई गई। ये देवी है क्या, राधा जी मूल देवियों की मूल देवी है, सीता जी मूल देवियों की देवी है मूल, उनकी छाया इस जगत में काली दुर्गा इत्यादि है, अलग से नहीं। इस समय में न तो दुर्गा जी का जन्म हुआ, न कोई विवाह हुआ, न कुछ हुआ, ये नव दुर्गा कहां से आ गया, उन लोगों ने ऐसी कल्पना करके थे, ऐसे समाज पर लगाया, धीरे 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 बंगाली लोग बहुत हाँ प्रवण होते हैं, उन लोगों के धीरे धीरे समाज, अब जहां जहां गए सब जगह प्रचार, ये रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव 9 दिन मनना चाहिए, चैतन्य क्षेत्र ये रामायण का पाठ हो, सीताराम जी की पूजा हो, ऐसा कोई उत्सव किया जाए, ये सब कुछ का कोई गंध नहीं। दुर्गा जी की पूजा नवमी में क्या करते हैं, भसान करते हैं देवी जी का, और कोई दुर्गा पाठ करता है, चालीसा पाठ करता है, कोई कुछ, इससे कोई संबंध ही नहीं। और फिर कार्तिक के महीने में जो फिर नवरात्रि को याकिया आती है, उस समय रामचंद्र जी लंका विजय के लिए जा रहे हैं, उस समय भी कोई प्रसंग नहीं। दुर्गा जी की पूजा होगी, होनी चाहिए, शास्त्र विधि के अनुसार में हो, वो भी भगवान की शक्ति है, किंतु जिस रूप में होना चाहिए उस रूप में होना चाहिए। धन धान्य के लिए लोग करेंगे, ये तो भागवत में ही लिखा गया, किंतु जो विचारवान है, बुद्धिमान है, वो कृष्ण राधा जी का भजन करेंगे, और साधारण लोग जो धन पुत्र परिवार लक्ष्मी ये चाहते वो करेंगे। आप लोग करेंगे, मनाएंगे नवरात्रि, राधा और कृष्ण के गुणगान करेंगे, कीर्तन करेंगे, भाव करेंगे, उनका पूजन करेंगे, कोई सीताराम का करेंगे, खूब ठाट के साथ में करेंगे, और उनका प्रसाद निर्माल्य होगा तो दुर्गा जी को भी दे देंगे, कोई हर्ज नहीं। उनका प्रसाद लेकर के निर्माल्य माने ये संभाला है, एकांतिक लोगों के लिए भी आवश्यक है, एकमात्र राधा कृष्ण की पूजा करने से सब ठीक हो जाए। तो चैतन्य महापुरुष इस प्रकार से उन लोगों को जो ऐसा करते थे, उन लोगों के लिए मुख में जैसे कुल्ला लेकर के फेंक देते हैं, ऐसे ही अपवित्र हैं, पैर से जल चला करके उनके ऊपर में छीटा देते हैं। पीछे से लोगों ने समझा, पहले नहीं समझे। इस प्रकार की नर्मद लीलाओं में सुंदर सुंदर उपदेश भरे पड़े हैं। गंगा स्नान करने के लिए लड़कियां जाती, ये भी पहुंच जाते और वहां पर ऐसे बैठ जाते, उम्र अभी कितनी 5-6 वर्ष की, बैठ जाते, हमारी पूजा करो, हमारी पूजा करेगी तुमको अच्छा वर मिलेगा, सुंदर वर मिलेगा, अच्छे घर का वर मिलेगा, पढ़ा लिखा मिलेगा, पैसा वाला मिलेगा, और यदि मेरी पूजा नहीं करेगी तो अंधा लंगड़ा लूला कुबड़ा ऐसा पति मिलेगा, निर्धन मिलेगा। इस प्रकार से छेड़खानी किया करते, लड़कियां सोचती अरे ये कह रहा है ये ऐसा होना जाए, इसलिए अच्छा जाओ उसको फल मूल खेले इत्यादि दे देती। लक्ष्मी प्रिया थी, बड़ी सीधी शादी 16 वर्ष, अभी 12-13-14 वर्ष की थी, और ये उस समय बड़े हो गए थे कुछ, जबकि स्नान करने गए तो जैसे सीता और राम में भेंट हुई ऐसे इन लोगों में भेंट हुई, कुछ कहा नहीं, किंतु मन ही मन उन्होंने वर्णन कर लिया, मन ही मन इन्होंने। फिर सची मैया ने उनके पास में, सची मैया भी जाती, सची मैया को रोज प्रणाम करती, कहती ऐसी बहू हमारे घर में आती हमारा घर बड़ा शांत हो जाता, हमारे बेटे का भी ब्याह हो जाता। ऐसी नरलीला कर रहे हैं ये विष्णुप्रिया है, कौन लक्ष्मी जी हैं, ऐसी नर्वत लीला करते जैसे किसी को मालूम नहीं। केशव काश्मीरी को कैसे परास्त किया, समस्त विश्व के विद्वानों को परास्त करता हुआ नवद्वीप में आया, और इस समय में 15-16 वर्ष के लड़के व्याकरण बच्चों को पढ़ाते, अलंकार शास्त्र इत्यादि नहीं पढ़े, और दिग्विजय पंडित महापुर उपस्थित हुआ, किसी की हिम्मत नहीं कि उसे कोई बात कर ले। नवद्वीप में बड़े बड़े धुरंधर विद्वान थे, भट्टाचार्य और क्या क्या, किसी की हिम्मत नहीं हुई। लोगों ने कहा जैसे ये बड़ा तंग करता है हम लोगों को, किसी के पास में भेज दो, कहा जैसे जल्दी जाओ हमारे यहाँ एक छोटा सा बच्चा पंडित है उसको हरा दो तो हमारे पास में आ। और उस समय शाम को चैतन्य महाप्रभु जी, उस समय निमाई पंडित नाम, बड़ा सुंदर चेहरा, अद्भुत अजान लंबित भुजाएं, राधा जी का सौंदर्य जिसको मिला हो वो कैसा होगा सुंदर, बच्चों के साथ में पढ़ पढ़ा रहे हैं संस्कृत भाषा में। और उसी समय वो पंडित बड़ी पगड़ी बांध करके और गाड़ियों में शास्त्रों को लाद करके वहां पर अपने बहुत से शिष्यों के समेत वहां आया। ये किस लिए किया, यदि एक विद्वान को किसी प्रसिद्ध को हरा दिया सभी लोग उसको मानने लगे, विद्वान के रूप में भी माने। तो वहां आया, देखा जैसे छोटे बच्चों की मंडली, बालकों की टोली बैठी हुई है। उसने किसी से पूछा, जा वो निमाई पंडित कौन है? छोटा सा एक बालक बैठा है और शिष्य बड़े बड़े सब। देखा जी बड़ा गंभीर लड़का है, देखने में भी खूब सुंदर है, बड़ा प्रतिभाशाली मालूम होता है। उसको कुछ डर सा लगता है, आज तक कहीं भी उसको डर नहीं लगा। निमाई पंडित को किसी ने इशारे से बतला जी वही केशव कश्मीरी है। उसकी तरफ में एक नजर देखा और बच्चों के साथ में संस्कृत में ही व्याकरण की बातें होने लग गई। वो सुनकर के बड़ा प्रसन्न है, वाह ये संस्कृत भाषा में छोटे छोटे बच्चे सब बड़े बड़े मधुर रूप में ये वार्तालाप कर रहे हैं, बहुत प्रभावित। महाप्रभु जी को किसी ने बतलाया ये वही केशव कश्मीरी है। इतने में वो आकर के पास में बैठ गया और बोला, वाह तुम लोग तो बड़े अच्छे लड़के हो, संस्कृत में बातचीत करते हो, व्याकरण इत्यादि की। महाप्रभु ने कहा जी नहीं, हम लोग तो छोटे से बालक भी हैं, आप तो बड़े विद्वान हैं, हम लोग कुछ चाहते हैं या आप कुछ बोलें। उन्हें मैं क्या बोलूं? अच्छा गंगा जी की महिमा आपको सुनाइए। बस झड़ाझड़ मिनटों में 100 श्लोक नए नए एकदम वहां पर उपस्थित कर दिया। जितने लोग थे अवाक हो गए, आश्चर्यचकित। इतना अद्भुत पंडित और इतना अलंकार अनुप्रास। महाप्रभु जी ने कहा कि वाह अब तो बहुत सुंदर रूप में महिमा वर्णन किया, तो तुमको अच्छा लगा कहां लगा? उन्होंने कहा जी इसमें से किसी भी श्लोक का एक थोड़ा सा अर्थ बतलाइए। कहा जी कौन सा श्लोक का बतलाओ? तो उधर जानता था जैसे ये बतला नहीं सकेगा, नया नया श्लोक हमने कहा। महाप्रभु जी ने ठीक एक बीच का श्लोक उच्चारण किया जी इसका अर्थ आप बतलाइए। तो चकित हुआ, अरे ये बीच का अर्थ इतना कठिन श्लोक और ये बीच का वो श्लोक जैसे तैसे एकदम उच्चारण करके बतलाया। कहा जी तुमको तो बहुत सुधर हो। तो उन्होंने कहा यदि कोई सरस्वती के वर से ऐसा बड़ा विद्वान हो सकता है आप जैसा, तो उसी की कृपा से कोई श्रुद्धर भी हो सकता है, एक बार सुनने से उसको याद हो जाए। किंतु वो झेप गया और मन में कुछ डर गया। उन्होंने कहा जी उसका आप विश्लेषण कीजिए, इसमें क्या गुण है क्या दोष है। तो उसने उसमें से 5 गुण और 5 दोष बतलाए। गुण ही दिखलाया। हाँ दिग्विजयी पंडित के श्लोकों में कोई भी दोष नहीं होता, केवल 5 गुण हैं, 5 गुण को बतलाया। बतला करके चुप हो गया और देखने लगा जैसे इसका क्या असर होता है। महाप्रभु जी ने निर्धड़क होकर के उनसे कहा जी यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी कुछ कहूं। कुछ दोष इसमें है। दोष है? दिखलाओ बोलो क्या दोष है। ऐसे 5 दोष दिखलाया। उन्होंने एक शब्द कहा था उसमें अलंकार के रूप में, देवी जी का नाम
भवानी भर्ता।
एक भवानी भर्ता, भवानी माने भव की स्त्री, भव माने शंकर, तो शंकर की स्त्री का भर्ता, भर्ता माने पति, भव माने शंकर, उनकी पत्नी कौन हुआ?
भवानी
हुई। और फिर उसका पति ले आए तो उनके विषय से अलंकार, किंतु ये अलंकार दृष्टि नहीं बल्कि ये दोष है कि जिसका स्त्री और फिर उसका पति, भव की स्त्री और फिर स्त्री की फिर पति, वही भव, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। पसीना छा गया उसके मुख पर, कोई उत्तर नहीं दे सका। और ऐसे ही 4 और 5 दोष दिखलाए, स्तंभित रह गया, सिर नीचा हो गया। आज मुझको किसी ने नहीं हरा, मैं हार गया। महाप्रभु का ये विचार था, यदि समस्त बड़े बड़े पंडितों में से दो चार को यदि परास्त कर दिया जाए, थे सभी लोग अपने आप जीत जाए। हमारे प्रभुपाद जी का प्रचार की यह धारा थी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी, हम लोगों के गुरु जी। यदि गांव में जाओ तो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति के पास में जाओ, जो धनी मानी ईमानदार और उसको गांव वाले सभी मानते हों, तो उसके पास में जाएगा और वहां पर बैठेगा, वहां से कुछ प्रचार होगा तो सब गांव वाले आएंगे। एक व्यक्ति के पकड़ने से सब गांव के जितने आदमी हैं सब उसके अनुगत सब आ जाएंगे, अपने आप सहज रूप में प्रचार हो जाएगा। इन्होंने विश्व में जितने बड़े बड़े लोग हैं उनमें से दो चार को, एक प्रताप रुद्र राजा, एक दूसरा हुआ सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती और एक केशव काश्मीर, बस चार पांच आदमियों को बस झुकाया और सारा विश्व औनत उनके चरणों में गिर गया। ये प्रचार का तरीका नरलीला के रूप में सहज सरल रूप में उन्होंने किया। इस तरह से महाप्रभु जी की जो नवद्वीप की लीला हुई वो साधारण एक मनुष्य लीला की भांति हुई, इसी को कहते हैं मधुर लीला, माधुरी। जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जी की जो लीलाएं दिखलाए हमने आज सवेरे जो बतलाया, समुद्र में कूद गए और ऐसा भाव हुआ, कभी 10-15 हाथ लंबे हो गए, कभी दरवाजा चारों तरफ से बंद, और कभी जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंच गए, कहीं वाटिका में पहुंच गए, कभी चटक पर्वत पर पहुंच गए। अद्भुत अद्भुत लीलाएं की, आदमी उनके प्रति गौरव भाव होता है, इतना ऊंचा, ये भगवान का अतिरिक्त और किसी में नहीं हो सकता, इसलिए सभी लोग उनको प्रणाम करते थे। प्रताप रुद्र राजा उनका दर्शन नहीं कर पाते थे, सब दामोदर राय रामानंद जैसे लोग वहां पर पड़े रहते, और हाँ जो साधारण लोग तो उनके पास में पहुंच नहीं पाते, इसलिए यह ऐश्वर्य लीला है। अपने आप आस्वादन किया, यू आर अंडरस्टैंडिंग समथिंग नथिंग, आई विल थिंक, आई एम थिंकिंग दैट आफ्टर दिस क्लास रामचंद्र प्रभु विल tell all these things to you. Our Navadvip Prabhu is hearing, he will tell you. इसलिए कृष्ण की जो लीलाएं हुई, नर्वत लीला वृंदावन में हुई और ऐश्वर्यमय लीला द्वारका में हुई और गोलोक में, इसलिए उनसे श्रेष्ठ ये वृंदावन है। इसी तरह से जहां पर ऐश्वर्य लीला हुई वहां जब षडभुज रूप दिखलाया सार्वभौम भट्टाचार्य जी, एक साथ राम का रूप, कृष्ण का रूप और महाप्रभु का रूप, दो हाथ में दंड कमंडलु, दो हाथ में तीर धनुष और दो हाथ में बंसी, उनको देखकर के सार्वभौम भट्टाचार्य एकदम गिर गए उनके चरणों। ये मनुष्य की लीला है, ये नहीं है, ऐश्वर्यमय लीला है। ये ऐसे लोगों को प्रभावित करने के लिए है, ये सब प्रचार के लिए है, और वो सब आस्वादन है नवद्वीप में नरलीला का, प्रचार भी है किंतु वो आस्वादन का है। और वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य गोदावरी के तट पर रसराज महाभाव रूप, वहां पर कैसा रूप दिख रहा है उनको, साध्य और साधन क्या है इसकी अंतिम चरम सीमा तक बतलाकर, साधन माने गोपियों के जो मूड है, भाव है, उस भाव से जो कृष्ण की आराधना की जाती है, ये सबसे श्रेष्ठ आराधना है, साधन है। इसके बिना कृष्ण चंद्र ब्रज में राधा और कृष्ण की आराधना नहीं होती, सातम में दिखलाया है। और प्रयोजन क्या है, कृष्ण के चरणों में गोपियों जैसा प्रेम होना, ये प्रयोजन है। ये साध्य साधन दोनों को दिखला करके और कुछ पूछा महाप्रभु जी उस समय में रसराज महाभाव, कृष्ण की अंतिम भावना जैसे गोपियों के साथ में होती है। जब रासलीला में कृष्ण अंतर्ध्यान होने के बाद में मिले थे, मनमत मनमथ, मनमत के भी मन को मत नहीं बाजे, वो कृष्ण का सर्वोत्तम रूप है, किशोर हाथों में बंसी, पीतांबर वनमाला के साथ में मुस्कुराते हुए गोपी के समाज में बैठे, और राधिका जी हैं महाभाव स्वरूप, इन दोनों का रूप दिख रहा है। कृष्ण का स्वरूप वो ढक गया राधा जी के गौर अंग से और भावों से, दोनों को एक साथ में ऐसा जो भीतर से श्याम रंग की झिलमिल झिलमिल कर रही है ऐसा देख करके राय रामानंद जी भी मुश्चित होकर उनके चरण में गिर गए। ये रसराज महाभाव कहीं नहीं दिख रहा है, यही उनका चैतन्य महापुरुष का स्वरूप है, किंतु देखने के बाद में उनके चरणों में गिर गए। दिखलाया तो किंतु इनके अंदर में ऐश्वर्य का भाव उदित हुआ। ये ललिता जी हैं कि विशाखा जी हैं, विशाखा जी ने ये भाव नहीं देखा था, ये यहाँ पर देखा। वो गोलोक के अंदर में वृंदावन के पास ही में जो श्वेत दीप है उसमें ये सब लाए हो, ललिता के रूप में नहीं या विशाखा के, किंतु वहां देख करके चरणों में लौट गए। इसलिए महाप्रभु जी की लीला नवदीप ताम को वृंदावन गुप्त वृंदावन और इसको जगन्नाथपुरी कहते हैं द्वारकापुरी को और गोदावरी वहां पर गोदावरी नदी भी रामलीला इत्यादि के सब लीला है। इस तरह से नवदीप की श्रेष्ठता है, महाप्रभु जी की लीला की अंतिम परावधि इसी को कहा जाता है। हम लोग के आचार्य वर्ग चैतन्य महाप्रभु को भक्त के रूप में आराधना नहीं करते, कृष्ण के साथ में रखते हैं, राधा कृष्ण दोनों का मिलित में, एक तरफ में चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण। यदि नित्यानंद प्रभु उनके साथ में रहेंगे तो अलग प्रकोष्ठ कर दिया जाएगा, नित्यानंद प्रभु के साथ में राधा जी को नहीं बैठा, और दोनों हाथ को ऐसे करके भक्त भाव से नहीं बल्कि जगत को आशीर्वाद देते हुए एक हाथ ऊपर और एक हाथ उनको तरह तरह के श्रृंगार मुकुट इत्यादि सब दिया जाता है। इस तरह से उनकी आराधना की जाती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी, नित्यानंद प्रभु जी, अद्वैत आचार्य गदाधर पंडित इत्यादि की हम लोगों ने अभी कीर्तन किया पंचतत्व का, जो उनकी उनकी हमारे ऊपर में कृपा आए, हम लोग उनका अनुसरण कर सकें, उस प्रेम के लिए हम लोग आराधना कर सकें। हमारे भक्ति का मूल आश्रय या मूल उद्देश्य क्या है? राधा कृष्ण के चरणों में प्रीति, यही जीवन का मूल उद्देश्य है। इस उद्देश्य को सामने रख करके हम आगे चले, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं हो, बस एक यही एकमात्र। कीर्तन करो तो कोई
जय नंदन पुरंदर